नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से कहा, सोशल मीडिया पर किसी भी राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार के संबंध में कड़ी निगरानी रखी जाए। फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। लद्दाख के होटलों में लेह हवाई अड्डे से उड़ाने रद्द होने के बाद फंसे पर्यटकों को निःशुल्क ठहरने का प्रस्ताव किया। भारत के हस्तक्षेप के बाद हांगकांग ने सोथबी द्वारा पेपरवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की। और क्रिकेट में भारत ने महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। दलगत लाइन से हटकर नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों ने सरकार की हर संभावित कार्रवाई का समर्थन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमलों के बाद कहा है कि अगर पाकिस्तान ने स्थिति को और बिगाड़ा तो वह जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में कल सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेसवार्ता में सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यह ऑपरेशन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपनी जवाबी कार्रवाई के अधिकार का प्रयोग किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान वीरता और साहस का परिचय देकर नया इतिहास रचा।
हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सहे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित तत्वों के राष्ट्रविरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गृहमंत्री ने कहा कि निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा और मजबूत की जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से जनता में अनावश्यक भय रोकने और अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कतर और जापान सहित अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कड़ी कार्रवाई पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कई देशों के सुरक्षा सलाहकारों से बात की। उन्होंने कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत दृढ़ता से जवाब देने के लिए तैयार है। विश्व समुदाय ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इसराइल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस किसी भी आतंकवादी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और इसके हर रूप का विरोधी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। भारतीय मूल के अमरीकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के साथ मौजूदा तनाव का इस्तेमाल लोकतंत्र को और कमजोर करने के बहाने के रूप में नहीं करें। इस बीच भारतीय मूल के एक अन्य सांसद श्री थानेदार ने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिल्म और खेल जगत से जुड़े जाने माने लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। एक रिपोर्ट।
अभिनेत्री कंगना रनौत, अभिनेता अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन और सुनील शेट्टी ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। सोशल मीडिया पोस्ट में अक्षय कुमार ने एक पोस्ट में जय हिंद जय महाकाल लिखा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने आतंकवाद पर सरकार के जीरो टॉलरेंस के रुख को दोहराया। सुनील शेट्टी ने कहा कि दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया दुनिया को दिखाती है कि वह कितना जिम्मेदार और आश्वस्त है। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और देवेंद्र झांझरिया ने भी भारतीय सेना की त्वरित और सुनियोजित जवाबी कार्रवाई की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। झूलन गोस्वामी ने भारत की कार्रवाई को सटीक, उद्देश्यपूर्ण और सामर्थ्यवान बताते हुए कहा कि यही है भारत का जवाब। शिखर धवन ने एक छोटी क्लिप शेयर करते हुए लिखा, जो कहा था वो कर दिखाया, न्याय हुआ, भारत माता की जय। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
उधर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है।
मैं अपनी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस सदैव हमेशा रेडी रहेंगी अगर कोई पाकिस्तान इस पर जवाब देता है, और पाकिस्तान को जो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।
जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले सैकड़ों निवासियों को कल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इससे पहले कल दिन में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी के गांवों पर तोपखाने और मोर्टार से गोलाबारी की। इसमें 4 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 12 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लद्दाख में लेह हवाई अड्डा बंद होने के कारण वहां फंसे पर्यटकों को निशुल्क आवास का प्रस्ताव दिया जा रहा है। होटल या गेस्ट हाउस से चेकआउट करने वाले पर्यटक जो अभी लेह में फंसे हुए हैं वो आतिथ्य उद्योग की इस राहत का लाभ उठा सकते हैं। ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के सभी हितधारकों ने विशेष परिस्थितियों के दौरान पर्यटकों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए कल इस सामूहिक निर्णय की जानकारी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया है कि पूरे देश को सेना के समर्थन में सशक्त संदेश देना चाहिए। हैदराबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मुश्किल समय में संयम बनाए रखना चाहिए, यहां राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए। सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी विदेशी यात्राएं रद्द कर तत्पर रहने के लिए कहा गया है। संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग में सोथबी द्वारा पवित्र पेपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित करा दिया है। ये नीलामी कल होनी थी। पेपरहवा अवशेषों की खुदाई 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा की गई थी। इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष, साबुन के पत्थर और क्रिस्टल के ताबूत और सोने के आभूषण तथा रत्न जैसे चढ़ावे शामिल हैं। संस्कृति सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोथबी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने 2 मई को हांगकांग के महावाणिज्य दूतावास को पत्र लिखकर नीलामी को तुरंत रोकने का अनुरोध किया था। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराघची 2 दिन के भारत यात्रा के दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। वो भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। पिछले साल अगस्त में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर अराघची की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक भारत ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही है। रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैच में 40.57 के औसत से 4301 रन बनाए हैं। इनमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। 38 वर्षीय रोहित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।
It's a huge honor and obviously the great feeling to be captaining India in all three forms.
So big cheer when he came out to bat. He's the local boy, Rohit Sharma.
Excel, you have to, you know, build more discipline, and my focus is completely and purely been on these particular things in the last few years.
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 16 स्वर्ण 14 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 44 पदकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं राजस्थान 9 स्वर्ण सहित 16 पदकों के साथ दूसरे और कर्नाटक 8 स्वर्ण सहित 23 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं जैसे बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और रिले में बड़ी संख्या में पदक दांव पर रहेंगे। सेपक टाकरा, टेबल टेनिस और निशानेबाजी में पदकों के लिए मुकाबले के अलावा प्रतिभागी राज्यों के युवा खिलाड़ी हॉकी, रग्बी, कबड्डी और खो खो की स्पर्धाओं में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। मार्शल आर्ट, गतका के खेलों में पंजाब ने कल खेले गए मुकाबलों में 21 पदकों में से 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। गतका की विभिन्न श्रेणियों में बिहार ने 9 कांस्य और 1 रजत पदक जीतकर पदक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
आईपीएल T20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में 2 विकेट से हरा दिया। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देश के पूर्व पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि 11 मई तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और गुजरात में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद नवीन। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के चित्र के साथ लिखता है, दुनिया ने देखा सिंदूर का शौर्य। जनसत्ता ने ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देने वाली कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका के चित्र के साथ दिया है नारी शक्ति देश की आवाज। लोकसत्ता ने सुर्खी दी है, ऑपरेशन सिंदूर जय हिंद की सेना आतंकियों को चुन चुन कर मारा, आतंकी अजहर मसूद के खानदान का खात्मा। वहीं दैनिक जागरण और अमर उजाला लिखता है, 25 मिनट 24 मिसाइलें और आतंकी ढेर। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जहां पहलगाम के आतंकियों ने ट्रेलिंग ली वो कैंप भी जमींदोज, ऑपरेशन सिंदूर से न्याय नारी शक्ति ने सुनाई शौर्य की कहानी। हिंदुस्तान ने भारत की कार्रवाई के बाद मुरीद की स्थित आतंकी ठिकानों के ध्वस्त हुए चित्र के साथ लिखा है, मिट्टी में ही मिला डाला। सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है, बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अपेक्षा थी ये तो करना ही था। हरिभूमि ने लिखा है, आधुनिक मिसाइलों से हमले कर बदला लिया, कैबिनेट की बैठक में मेजे थपथपाकर सेना के अदम्य साहस का किया गया समर्थन।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से कहा, सोशल मीडिया पर किसी भी राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार के संबंध में कड़ी निगरानी रखी जाए। फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। लद्दाख के होटलों ने लेह हवाई अड्डे से उड़ाने रद्द होने के बाद फंसे पर्यटकों को निःशुल्क ठहराने का प्रस्ताव किया। भारत के हस्तक्षेप के बाद हांगकांग ने सोथबी द्वारा पेपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की। और क्रिकेट में भारत ने महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।